छोटी सी घटना आपसे कहूँ, सबको मालूम होगी, महाभारत की घटना है और सब जानते हैं, फिर भी अपन उस पर विचार करते हैं, नए सिरे से विचार करते हैं। मैं सोचता हूं अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को, जो कि अज्ञानतावश घट जाती हैं, अगर ज्ञान होने पर पुनः हम उन पर विचार करें तो वे घटनाएं हमें बहुत सारे संदेश देती हैं। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में अज्ञानतावश घटित होती हैं, जिनके हम ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल पाते अपने ही जीवन के। किसी और के जीवन की घटनाओं से तो शिक्षा लेना अच्छा है ही, अपने जीवन की अज्ञानतावश घटी हुई घटनाओं से भी शिक्षा लेना शायद बहुत अधिक लाभप्रद है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने युद्ध अनिवार्य है, महाभारत होने को है। श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कोई समझौता हो जाए, लेकिन दुर्योधन समझौता करने तैयार नहीं है। बहुत स्पष्ट सी स्थिति है कि युद्ध होगा। युद्ध होगा तो अब युद्ध में अकेले तो लड़ा नहीं जाता, कुछ साथी चाहिए। ढूंढ रहे हैं दोनों जन कि कौन कौन उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। देखो तो मजा, हम यहां संसार में जूझते हैं, उसके लिए भी हमें जूझने के लिए दूसरे की मदद चाहिए, और गए हैं मदद लेने के लिए। तो सबसे पहले उनने कहा कि चलें अपन श्री कृष्ण से ही मदद ले लें, सुनते हैं नारायण हैं, मदद मिलेगी। और उनके पास तो 11 अक्षौणी सेना है, कमती नहीं है, बहुत है, मिल जाएगी, जितनी अपन चाहेंगे उतनी मिल जाएगी। पहुंच गए हैं, दुर्योधन पहले पहुंच गए, जिसे कमती मिलने का एहसास होता है वो पहले पहुंच जाता है, वो पहले हड़बड़ी मचाता है। हमारे हो जाते पहले, उनको लग रहा हो नहीं तो। हम तो चूकते नहीं है, हम तो कह देते हैं अपनी बात, नहीं होता मन में आता नहीं, आता तो है, यही है। दुर्योधन पहले पहुंच गए, कि ऐसा ना हो कि अर्जुन पहले पहुंच करके मांग ले। और पहुंच करके देखा तो श्री कृष्ण सो रहे थे, कहां बैठ के, जा करके सिर के पास। डिसाइड तो वहीं हो गया, डिसाइड तो वहीं हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और उसके बाद पहुंचे थे अर्जुन, और वो बैठ गए थे जाकर के पैरों के पास। अभी श्री कृष्ण सोए हैं, जागे नहीं हैं, दोनों उपस्थित हैं। हम भी जब सोए रहते हैं तब दोनों चीजें हमारे सामने रहती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी एक साथ आती है। दोनों अच्छाई और बुराई एक साथ हमारे सामने आती है, और हमसे ही ऊर्जा पाती है, और हमसे ही कुछ ना कुछ मांग लेती, हमारी अच्छाई और हमारी बुराई। अब सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उस अच्छाई और बुराई में से किसे ज्यादा ऊर्जा देनी है। वृक्ष लगा हुआ है एक विष का और एक अमृत का, रोज सुबह उठकर जिसमें पानी डाला होगा वही हरा भरा हो। विष का वृक्ष अगर घर में हरा भरा हो रहा है और दोष दूसरे को दें तो इससे काम न बने। हमें अपनी चॉइस खुद देखना पड़ेगी कि सुबह उठकर के सबसे पहले पानी जिसमें डाला है, पानी जिसमें डाला है वो हरा भरा होगा। बुराइयों के लिए अगर हमने सींचा है तो बुराइयां हमारे जीवन में हरी भरी होंगी, हमेशा तरोताजा रहेंगे और हमेशा उपस्थित रहेंगे। यही चीज हमेशा हमारे साथ भी, अच्छाई और बुराई दोनों में से हम चुन नहीं पाए। हमने हमेशा अपनी अज्ञानता बस बुराई को ही चुन लिया, और अच्छाई को हम वहीं सामने होते हुए भी इग्नोर करके चले गए, और हमारा व्यक्तित्व स्वयं अपने हाथों हमने नष्ट किया है, किसी और ने नष्ट नहीं किया। कोई किसी के व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करता, व्यक्ति स्वयं अपने परिणामों के द्वारा नष्ट करता। और कहते हैं कि श्री कृष्ण की नींद खुली तो डेफिनेट है कि उनकी दृष्टि सबसे पहले गई जो कि चरणों में बैठा हुआ था। हमारा जीवन हम अगर अहंकारी बनाते हैं और दूसरे के सिर पर बैठना चाहते हैं तो दूसरा हमें उतनी जल्दी नहीं देख पाएगा। जितना हम अपने जीवन को विनम्र बना के और किसी के चरणों में बैठते हैं तो पहले नंबर देख लिया जाएगा। अहंकारी पर दृष्टि सबकी बाद में जाती है, लेकिन अहंकारी की कोशिश सबसे पहले उस पर दृष्टि जाए इस बात की होती है। दुर्योधन ने तो यही सोचा था कि उधर बैठूं ना, जहां सिर है, जहां से जागेंगे, जहां से आंख खुलेगी, और सबसे पहले हम इनको देखेंगे, लेकिन दृष्टि हमेशा चरणों पर जाती है। दृष्टि ज्ञान से दिशा तो पाती है, लेकिन आचरण से पवित्र होती है, ये ध्यान रखना। दृष्टि हमेशा ज्ञान से दिशा पाती है, ज्ञान मस्तिष्क में है, लेकिन निर्मलता काहे से आती है? आचरण से, चरणों से। जब हम चलते हैं उस रास्ते पर, तब दृष्टि निर्मल होती है। और जैसे ही दृष्टि खुली श्री कृष्ण की, पहले नंबर अर्जुन को देखा और कहा कि कब आए। इसके पहले कि अर्जुन कहे कि अभी आया हूं, दुर्योधन फौरन बोल पड़े, अहंकारी को अपनी एग्जिस्टेंस बताना पड़ती कि मैं भी बैठा हूं मिस्टर, ऐसे कैसे, वो बाद में आए, हम पहले जाएंगे। उन्होंने कहा मैं पहले से आया हूं, मैं यहां बैठा हूं। ऐसा ही तो हमारा जीवन है और ज्यादा नहीं है। कंपेयर करते चले जाइएगा, पूरी कहानी कंपेरिजन करने की है, और बस आखिरी में कहानी पूरी होगी और शायद हमारे अपने जीवन की भी कहानी पूरी होगी। और अर्जुन ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, दुर्योधन पहले आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये नहीं चलेगा, मेरी दृष्टि जिस पे पहले गई है उसको पहले अधिकार है, क्यों आए हो मुझे मालूम है, दोनों के सामने युद्ध है और मुझसे सहायता लेने आए हो मैं जान रहा हूं, लेकिन पहला अधिकार है कि अर्जुन मांगे। और सुनो, मेरे पास दो चीजें हैं देने के लिए, एक निहत्ता अकेला मैं और एक मेरी 11 अक्षौणी सेना। अब घबराए दुर्योधन, अरे ऐसा मालूम हो जाता तो पैर के पास बैठ जाते। अहंकारी झुकेगा भी तो अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए झुकेगा, ये ध्यान रखना। दुर्योधन ने क्या सोचा, अरे अगर ऐसा मालूम होता कि पैर के पास बैठने से फर्स्ट नंबर आएगा तो क्या फर्क पड़ता था, अपन वहां बैठ जाते। अब लेकिन भीतर बहुत दुविधा थी कि चूक तो हो गई, अर्जुन को पहला नंबर मिल जाएगा, और अर्जुन ऐसा ना हो कि सेनाएं मांग ले, 11 अक्षौणी सेना, इस अकेले श्री कृष्ण का क्या करूंगा, ये निहत्था, ये मांग ना ले अर्जुन। अब बहुत बहुत पशुपेश में है दुर्योधन, और अर्जुन तो सिर झुकाए चुपचाप खड़े। श्री कृष्ण ने कहा मांगो अर्जुन, तुम्हें ही पहले मांगना है। उन्होंने कहा भगवान आप ही को मांगता। बहुत जोर से ठहाका लगाया था दुर्योधन ने कि हम तो सोच रहे थे कि शकुनी मामा के साथ, इनके साथ हमने छल करके इनको बुद्धू बनाया, लेकिन ये तो जन्म के बुद्धू, मांग तो तक नहीं बनो, समझ में आ गई। हम तो सोचते थे कि हमें ने इनको बुद्धू बनाया था, ठग लिया था, लेकिन ये है ही बुद्धू जन्म के। अरे इतनी बढ़िया सेना मांगने की थी, बहुत खुश हुए दुर्योधन और मांग ली 11 अक्षौणी सेना। और जीता कौन था, जीत सबके सामने स्पष्ट थी, सेनाएं नहीं जीतती हैं, सेनाओं को जो गवर्न करता है वो जीतता है। सेनाएं लेकर के क्या करेंगे, उन सेनाओं का आधिपत्य जिसके हाथ में है, वो जिस तरफ है वो जीतने वाला है। हमारे पास भी, हमने अपनी इन सेनाओं को लगा रखा है इस संसार के युद्ध में। कौन कौन सी हैं सेनाएं हमारे पास, 11 अक्षौणी सेना है हमारे पास, लेकिन हमारा श्री कृष्ण हमारे हृदय से गायब हो गया है। हमारी अपनी चॉइस, हमने जो चुना, 11 अक्षौणी सेना चुनी हमने हमेशा। कौन सी है 11 अक्षौणी सेना, मुझे कोई मतलब नहीं उस युद्ध से। इदम शरीरम कौन्ते युद्धम, युद्ध क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम धर्म क्षेत्रम अपि इदम्। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। जब मैं इसमें संसार बढ़ाना शुरू करता हूं तब ये कुरुक्षेत्र हो जाता है, जब मैं इसी शरीर में धर्म की आराधना शुरू करता हूं तब यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में मेरी और माम का पांडवा पुत्रा, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, धृतराष्ट्र जो कि मोह में अंधे हैं, पूछते हैं जब संजय से,
तब संजय को पूछते समय ही डिसाइड हो जाता है कि माम कहा पांडव पुत्रा, मेरे और पांडव के पुत्र, ये जो मेरे और तेरे का राग द्वेष है, युधिष्ठिर उसी में अंधे, धृतराष्ट्र उसी में अंधे थे, वही उनकी हार का कारण बना था, वही मोह हमारी भी हार का कारण बनता है। वो 11 अक्षौणी सेना हमारी अपनी च्वाइस है, उधर चुनी थी दुर्योधन ने, हम भी कमती दुर्योधन नहीं है, हमने भी चुनी है वही सेना। कहते जरूर हैं कि हमने चुना है भगवान को, नहीं हमने चुना है संसार को। कौन सी है 11 अक्षौणी सेना? पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्री के विषय और मन, यही है 11 अक्षौणी सेना। पांचों इंद्री के मन के विषय 5, 10 और 1 मन, 11 अक्षौणी सेना और श्री कृष्ण और कोई नहीं है। हमारे भीतर बैठा हुआ इस जीवन का सारथ्य करने वाला हमारा सारथी, हमारा विवेक, हमें चुनना है दोनों में से किसी एक को। ये हमारे चुनाव पे डिपेंड करता है, हमारी लाइफ का क्या स्टाइल होगा ये हमारी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। हमने चुना ही ये, हमने पांचों इंद्रिय उसके मन और मन और उसके विषय चुने हैं, हमने कभी विवेक तो चुना ही नहीं अपने जीवन में। हम देखें, गौर से देखें, हमारा विवेक सोया हुआ है, काश हम अपने विवेक को जागृत करते और उस विवेक की आंख से कैसा है ये जीवन, मुझे कैसा बनाना है जीवन, ये देख लेते तो वे पांचों इंद्री और मन के विषय, अगर वो विवेक हमारे पास है तो वो पांचों इंद्री और मन के विषय 11 अक्षौणी सेना हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकती है, वो सब संसार जिसके बीच हम रहते हैं वो हमें भटका नहीं सकता है, बशर्ते कि हमारा विवेक हमारे साथ है। अगर हम थोड़े से